पिछले अध्याय में आपने देखा कि रूही और दिशा पकड़ी गई और दिशा को अनाथाश्रम भेज दिया गया, जबकि रूही को रुद्र के पास ले जाया गया। इस अध्याय में रूही और रुद्र कार में सिंघानिया विला के लिए रवाना हुए। रुद्र ने रूही को डांटा और उसे गोद में बिठा लिया। रूही को रुद्र ने काटा और चूमने लगा और रूही ने विरोध किया। रूही डर गई और भाग गई, लेकिन रुद्र ने उसे पकड़ लिया और उसे धमकाया। रुद्र ने सुमन जी को भी डांटा और रूही को घर से बाहर जाने पर सवाल किया। नाउ नेक्स्ट चैप्टर 72। अब आगे। रुद्र की बात सुनकर रूही अपने कपड़ों को मुट्ठियों में भर लेती है, मगर कुछ बोलती नहीं। वहीं रूही को कुछ भी न बोलता हुआ देखकर सुमन जी समझ जाती हैं कि रूही उन्हें बचाने के लिए रुद्र से झूठ बोल रही हैं। इसलिए वे खुद रुद्र को कुछ ऐसा बोलती हैं कि रुद्र अपनी जलती हुई निगाहों से उन्हें ही देखने लगता है। सुमन जी रूही को चुप देखकर रुद्र से बोली, रूही बिटिया को यहाँ से बाहर जाने की परमिशन मैंने दी थी। सुमन जी की बात सुनकर रुद्र गुस्से से बोला, आपने किसके पूछकर मेरी रूह को यहाँ से बाहर जाने की परमिशन दी? क्या आपने रूह के बारे में कोई फैसला लेने के पहले मुझसे एक बार पूछना या बताना जरूरी नहीं समझा? रुद्र की बात सुनकर सुमन कुछ भी नहीं कहती है, पर रुद्र की बातों को सुनकर उन्हें तकलीफ जरूर हुई थी। वहीं रुद्र सबको गुस्से भरी नजरों से देख रूही का हाथ पकड़ अपने कमरे की तरफ ले जाने लगता है, जिसे देख रूही वहीं पास में रखे सोफे को अपने एक हाथ से पकड़ खुद को रुद्र के साथ जाने से रोकते हुए बोली,
मुझे तुम्हारे साथ कमरे में नहीं जाना, मुझे परी से बहुत जरूरी काम है। मैं पहले परी के साथ बात कर लेती हूँ, फिर कमरे में आऊंगी। तुम्हें जाना है तो तुम जाओ।
इतना बोल वे अपनी हल्की ग्रीन आंखों से रुद्र को देखने लगती है, पर वे ज्यादा देर तक रुद्र की गुस्से भरी आंखों में नहीं देख पाती और अपनी नजरें झुका लेती हैं। वहीं रुद्र अपनी नीली आंखों से रूही को एक नजर देखता है, फिर एक झटके में रूही को पकड़ अपनी तरफ खींचता है, जिसकी रूही की पकड़ सोफे पर से छूट जाती है और वे सीधा जाकर रुद्र के सीने से टकरा जाती है। अभी वे कुछ समझ पाती या रुद्र से दूर हो पाती, रुद्र उसे सबके सामने एक झटके में अपनी गोद में उठा लेता है, फिर बिना किसी पर ध्यान दिए रूही को लेकर ऊपर चला जाता है। रुद्र के जाने के बाद परी सुमन के पास आकर चिंता भरी आवाज में बोली, मॉम, ये भाई तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में है, कहीं ये रूही के साथ कुछ गलत न करे, उसे तकलीफ न दे। परी की बात सुनकर सुमन कुछ बोलती, तभी कामना बीच में आते हुए बोली, अच्छा ही है ना कि रुद्र उस दो कुड़ी की लड़की को सबक सिखाए, वरना रुद्र ने इस लड़की को इसी तरह खुला छोड़ दिया ना तो ये लड़की एक दिन रुद्र के सिर पर ही चढ़कर नाचेगी। इसके अच्छा कि उसे अभी ही सबक मिल जाए। वैसे भी इस जैसी अनाथ लड़की की कोई औकात नहीं है कि ये लड़की हमारे घर की बहू बने। पता नहीं रुद्र को इस लड़की में ऐसा क्या दिखा जो उसने इस जैसी अनाथ और गरीब लड़की से शादी कर ली, जबकि अमीर के अमीर खानदान की लड़कियां रुद्र के शादी करने के लिए मरी जा रही हैं, लेकिन रुद्र ने इस बेवकूफ लड़की से शादी कर ली। फिर सुमन और अपनी माँ प्रीता की तरफ देखते हुए बोली, भाभी और माँ, आप लोग मानो या ना मानो, पर मुझे इस बात की पूरी उम्मीद है कि जरूर इस लड़की ने ही कुछ किया होगा और रुद्र को अपने जाल में फंसाया होगा, तभी रुद्र इसके शादी करने के लिए तैयार हो गया, वरना कहाँ रुद्र और कहाँ ये लड़की, दोनों की एक दूसरे से कोई तुलना ही नहीं की जा सकती। कामना इसके आगे कुछ बोलती तभी प्रीता उसे डांटते हुए बोली, तू चुप कर, जब भी बोलती है गलत ही बोलती है, तू चल मेरे साथ कमरे में, वरना यहाँ रही तो बकवास ही करती रहेगी। अपनी माँ की बातें सुनकर कामना मुंह बनाते हुए बोली, माँ, मैं हमेशा सच बोलती हूँ, इसीलिए आपको बुरी लगती हूँ। कामना इसके आगे कुछ भी बोल पाती कि प्रीता उसे लेकर चली जाती है। वहीं सुमन परी को देख बोली, बेटा तू जा आराम कर, मुझे पता है कि रुद्र गुस्से वाला है, पर वे रूही के साथ कुछ बुरा नहीं करेगा, इसलिए तू चिंता मत कर। वैसे भी अब हम कुछ कर भी नहीं सकते, ना ही रुद्र को कुछ भी करने से रोक सकते हैं। सुमन की बात सुनकर परी भी अपना सर हाँ में हिला देती है, क्योंकि उसे भी पता था कि इस घर में सबसे ज्यादा उसके भाई की ही चलती है और कोई भी उसके खिलाफ नहीं जा सकता। इसलिए वे मन मारकर वहां से अपने कमरे की तरफ चली जाती है, पर उसे अब भी रूही की काफी चिंता हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ देवांश के ऑफिस में, देवांश मीटिंग हॉल में बैठा मीटिंग अटेंड कर रहा था, पर उसका सारा ध्यान दिशा के बारे में सोचने पर था। वे बस दिशा के यहाँ आने का इंतजार कर रहा था, क्योंकि उसे पता चल गया था कि दिशा रूही को लेकर यहाँ से भाग रही थी। इस बात को सुनकर ही देवांश को दिशा के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसका मन कर रहा था कि वे सच में दिशा के पैर तोड़ दे, ताकि वे दोबारा उसके कभी भी दूर न भाग सके। वे ये सब सोच ही रहा था कि तभी फैशन डिजाइनर का हेड बोला, सर, आपको ये प्रेजेंटेशन कैसी लगी हमारी नेक्स्ट इवेंट के लिए? उस हेड की बात सुनकर देवांश होश में आता है और उसे देख अपनी रौबदार आवाज में बोला, अभी इसमें और ज्यादा सुधार की जरूरत है, इसमें पहले सुधार करो, फिर हम दोबारा इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। इतना बोल वे तुरंत मीटिंग रूम से चला जाता है। कुछ देर बाद वे अपने कैबिन के पास पहुंचता है और जैसे ही वे अपने कैबिन का डोर खोलता है, वैसे ही कोई आकर उसके सीने से लग जाता है, जिसे देख देवांश के चेहरे पर एक मिस्टीरियस स्माइल आ जाती है और वे भी उसे टाइटली गले लग उसकी गर्दन में अपना चेहरा छिपा उसकी खुशबू और उसे महसूस करने लगता है। अभी उसे ऐसा करते हुए कुछ टाइम ही हुआ था कि उसे उसकी आवाज सुनाई देती है, देखिए आप जो भी हैं, प्लीज मुझे बचा लीजिए, वे बॉडीगार्ड्स मुझे पता नहीं क्यों यहाँ पर लेकर आए हैं, मुझे कुछ भी दिख नहीं रहा और मेरे हाथ भी बंधे हुए हैं, प्लीज मेरी हेल्प कीजिए, मुझे यहाँ से जाना है। देवांश ने जिस लड़की को गले लगाया था वे कोई और नहीं बल्कि दिशा ही थी,
और दिशा को इस तरह यहाँ लाने और ऐसा करने के लिए देवांश ने ही कहा था, क्योंकि देवांश दिशा को अपने आप से दूर जाने की पनिशमेंट देना चाहता था। साथ ही साथ उसका दिशा के बिना इस ऑफिस में काम करने का मन नहीं कर रहा था, इसीलिए देवांश ने दिशा को यहाँ लाने के लिए ये प्लान बनाया था। वहीं दूसरी तरफ रुद्र के कमरे में, रुद्र रूही को लेकर सीधा बाथरूम में जाता है और उसे एक झटके में बाथटब में फेंक देता है। वहीं रुद्र के अचानक बाथटब में फेंकने की वजह से रूही को अपनी कमर में हल्की सी चोट लग जाती है, जिस वजह से वे अपनी कमर को हल्का हल्का सहलाने लगती है।
वे अपनी कमर को अभी सहला ही रही थी कि रुद्र उसके साथ कुछ ऐसा करता है जिसकी उसकी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो जाती हैं और उसके चेहरे पर डर साफ साफ नजर आने लगता है।